नमस्कार भारत 31 अगस्त दिन सोमवार, मैं हूं अशोक कुमार। भूमि अधिग्रहण अध्यादेश की मियाद आज होगी खत्म, सरकार अब नहीं लाएगी अध्यादेश, विरोधियों ने कहा आखिर झुकी सरकार।
चले थे बिहार को ललकारने, आज घुटना टेकना पड़ा, ये देश के लोगों की सबसे बड़ी जीत है।
कन्नड़ लेखक कलबुर्गी की हत्या से कर्नाटक में साहित्य और शिक्षा जगत से जुड़े लोग सदमे में, और कराची में आजकल हंगामा क्यों है बरपा, बताएंगे वसुतुल्ला खान।
कुछ लोग कहते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छा है कि इस बार सेना सत्ता छीने बगैर सिविलियंस को आगे रखे सिस्टम की धुलाई कर रही है।
खबरें खेल की भी, अखबारों की समीक्षा भी होगी, लेकिन जरा ठहर के पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार वात्सल्य राय से। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने विवादों में रहे भूमि अधिग्रहण विधेयक पर फिर से अध्यादेश नहीं लाने का फैसला किया है। अध्यादेश की सीमा आज खत्म हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में कहा कि सरकार ने तय किया है कि अध्यादेश को खत्म होने दिया जाए। मोदी ने कहा कि अध्यादेश खत्म हो रहा है, लेकिन 13 ऐसे बिंदु हैं जिन्हें नियम के तहत लाकर लागू किया जा रहा है। विपक्ष ने सरकार के इस फैसले को अपनी जीत बताया है। इस्लामिक स्टेट के चरमपंथियों के सीरिया के शहर पलमायरा में एक धार्मिक इमारत के कुछ हिस्से को उड़ाने की खबर है। ब्रिटेन स्थित संस्था सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स और एक स्थानीय व्यक्ति का कहना है कि चरमपंथियों ने रोमन टेम्पल को उड़ा दिया। उसने बताया कि विस्फोट से काफ़ी नुकसान हुआ है। बीते हफ्ते भी एक वीडियो सामने आया था जिसमें आईएस चरमपंथियों को प्राचीन धार्मिक इमारत बाल शमीन को उड़ाते हुए दिखाया गया। आईएस ने मई में पलमायरा पर कब्जा कर लिया था। यूरोपीय संघ ने कहा है कि प्रवासी संकट का समाधान निकालने के लिए उसके सभी गृह मंत्री 2 हफ्ते बाद लग्जमबर्ग में बैठक करेंगे। लग्जमबर्ग की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि हाल में ये संकट बहुत गहरा गया है। लग्जमबर्ग फिलहाल यूरोपीय संघ का अध्यक्ष है। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने कहा है कि जब भी प्रवासी इटली और ग्रीस आएं, तो उनके फिंगरप्रिंट लिए जाएं, उनका पंजीकरण भी किया जाए। उधर फ्रांस के विदेश मंत्री लॉरे फाव्यू ने यूरोपीय संघ के उन सदस्यों की निंदा की है जिन्होंने प्रवासियों को शरण देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा
que l'Hongrie ne respecte pas les valeurs qui sont les valeurs communes de l'Europe et donc il faut que les autres
हंगरी यूरोप के साझा मूल्यों पर खरा नहीं उतरता, ये जरूरी है कि यूरोप का प्रशासन गंभीरता से बातचीत करे, अधिकारियों के साथ भी गंभीरता से बातचीत की जरूरत है। ये थे फाव्यू के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। मिस्र में अक्टूबर और नवंबर में संसदीय चुनाव होंगे। मिस्र में साल 2012 में पिछली संसद भंग हुई थी। एक साल बाद देश के पहले इस्लामी राष्ट्रपति मोहम्मद मोरसी को सेना ने हटा दिया था। सेना प्रमुख रहे अल सीसी पिछले साल राष्ट्रपति बनने के बाद से कई कानूनों को मंजूरी दे चुके हैं। देश में संसदीय चुनाव 2014 में होने थे, लेकिन चुनाव लगातार टलते रहे। चीन में 200 लोगों को झूठी अफवाह फैलाने के मामले में सजा दी गई है। इन लोगों पर शेयर बाजार की हालिया गिरावट और तियानजिन में हुए धमाकों को लेकर इंटरनेट पर अफवाह फैलाने का आरोप था। बीबीसी समाचार।
श्रोताओं, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा का कार्यक्रम नमस्कार भारत। रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और हमारी मोबाइल साइट के जरिए अपने मोबाइल फोन पर भी लाइव। आपके साथ मैं हूं अशोक कुमार। कार्यक्रम में बात सबसे पहले उस मुद्दे की जिसकी गूंज पिछले एक साल में खूब सुनाई दी, मुद्दा भूमि अधिग्रहण का। 2013 में बने भूमि अधिग्रहण कानून में मोदी सरकार बदलाव करना चाहती है, लेकिन विपक्ष के कड़े विरोध के चलते ऐसा नहीं हो पाया। बहरहाल, अपने संशोधनों को लागू करने के लिए सरकार ने अध्यादेश का रास्ता चुना और 3 बार अध्यादेश जारी हुआ, लेकिन अब इस मुद्दे पर अध्यादेश नहीं लाया जाएगा। कल इस बात की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात रेडियो कार्यक्रम में कर दी। विरोधी इसे सरकार की हार और अपनी जीत बता रहे हैं। सुनिए समीरात्मज मिश्र की ये रिपोर्ट।
जिस भूमि अधिग्रहण कानून को भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने प्रतिष्ठा का प्रश्न बना रखा था और जिस पर विवाद के चलते संसद के पूरे सत्र तक कुर्बान होते रहे, उसका पटाक्षेप प्रधानमंत्री की मन की बात में कल अचानक हो गया। इस विषय पर सरकार की ओर से तीसरी बार लाए गए अध्यादेश की मियाद आज खत्म हो रही है और प्रधानमंत्री ने कल कह दिया कि उसे खत्म होने दिया जाए और अब चौथी बार अध्यादेश नहीं आएगा।
31 अगस्त को ऑर्डिनेंस की सीमा समाप्त हो रही है और मैंने तय किया है समाप्त होने दिया जाए। मतलब ये हुआ कि मेरी सरकार बनी उसके पहले जो स्थिति थी वह अब पुनः प्रस्तापित हो चुकी है। ऑर्डिनेंस तो समाप्त हो रहा है लेकिन जिससे किसानों को सीधा लाभ मिलने वाला है उन 13 बिंदुओं को हम नियमों के तहत ला करके लागू कर रहे हैं।
दरअसल सरकार की जिद थी कि वो भूमि अधिग्रहण पर साल 2013 के कानून की जगह अपनी पसंद का कानून लाएगी और विपक्ष खासकर कांग्रेस इस बात पर अड़ी थी कि वो इस कानून में रत्ती भर भी परिवर्तन नहीं होने देगी। दोनों पक्षों ने इसे लेकर जमकर प्रयास किया और यही वजह है कि संसद के कम दो सत्र इस लड़ाई की भेंट चढ़ गए। प्रधानमंत्री दिल्ली में आकाशवाणी से कल मन की बात कर रहे थे और पटना में महागठबंधन की रैली में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी भाषण दे रही थी। जाहिर है सोनिया गांधी ने इसे विपक्ष की जीत के रूप में लिया।
मोदी सरकार किसान विरोधी सरकार है, जो किसानों की जमीन छीन कर अपने चंद अमीर दोस्तों में बांटना चाहती है। देश के किसानों के हकों की रक्षा के लिए हम सभी ने संसद में लड़ाई लड़ी और आखिर में सरकार को झुकना पड़ा।
रैली में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कुछ इसी विजयी अंदाज में भूमि अधिग्रहण कानून की चर्चा की।
चले थे बिहार को ललकारने, आज घुटना टेकना पड़ा। ये देश के लोगों की सबसे बड़ी जीत है। ये जो भूमि अधिग्रहण के लिए कानून 2013 में बना था वह बहुत ही प्रगतिशील कानून था। सभी पार्टियों ने उसका समर्थन दिया था जिसमें भाजपा भी शामिल थी, लेकिन यहाँ सत्ता में आने के बाद आपने उस कानून को कमजोर करने की कोशिश की। लोगों का जबरदस्त विरोध हुआ देश भर में और लोग बताते रहे कि लोगों को गुमराह किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री ने मन की बात में यह भी कहा कि जिन 13 बिंदुओं के कारण कानून में बदलाव की बात हो रही थी उन्हें नियमों के तहत लाकर तत्काल लागू किया जा रहा है ताकि किसानों को नुकसान न हो। लेकिन सवाल उठता है कि सरकार का ये नया कदम विपक्ष की जीत है या फिर सरकार की कोई नई रणनीति। वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह कहते हैं,
इसको दोनों तरह से देखा जा सकता है कि एक इस मुद्दे पर आम राय बनाने में सरकार नाकाम रही इसलिए उसको ये कदम उठाना पड़ा। दूसरा, इसको एक व्यवहारिक राजनीति के नजरिए से देखा जा सकता है कि जिस मुद्दे पर आम राय नहीं बन रही थी, सरकार की छवि खराब हो रही थी, उसे किसान विरोधी बताया जा रहा था और विपक्ष में जो बंटवारा था वो एकजुटता में बदल गया, सरकार के लिए और बिलों के लिए विधेयकों के लिए मुश्किल होने लगी। तो इसको देखते हुए सरकार का ये कदम एक तरह से कह सकते व्यवहारिक राजनीति का जो तकाजा है उसके तहत उठाया गया। कांग्रेस को तो मतलब भी खुश तो हो सकते हैं लेकिन खुश होने की बात इसलिए नहीं है कि 2013 का जो कानून है उसमें सबसे ज्यादा एतराज कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को था।
बहरहाल अब ये तय हो गया है कि भूमि अधिग्रहण पर साल 2013 का ही कानून प्रभाव में रहेगा। सरकार न तो उसे बदलेगी और न ही संशोधन करेगी। जानकारों का कहना है कि ये चाहे सरकार की जीत हो या विपक्ष की, संतोष की बात यही है कि संसद में गतिरोध की कम से कम एक वजह तो खत्म हुई। समीर आत्मज मिश्र, BBC दिल्ली।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया है कि लैंड बिल के मामले में जो पहले स्थिति थी वो अब बनी रहेगी, लेकिन इसमें 13 बिंदुओं को शामिल किया जाएगा ताकि उनका फायदा संबंधित लोगों को मिल सके। लेकिन किसी मौजूदा कानून में कुछ नियमों को लागू करने की इजाजत संविधान किस तरह से देता है, इस बारे में समीरात्मज मिश्र ने ही बात की संविधानविद सुभाष कश्यप से।
हर एक्ट में प्राय एक रूल मेकिंग पावर की प्रोविजन होती है। एक्ट को लागू करने के लिए, उसको प्रभाव में लाने के लिए एक्ट रूल्स बनाने होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन, और रूल्स रेगुलेशन की पावर एक्ट में दी हुई होती है। तो जो 213 के एक्ट में रूल मेकिंग की पावर है उसके अंतर्गत रूल बनाए जा सकते हैं, रूल अमेंड भी किए जा सकते हैं। अब सवाल यह है कि जो 13 बिंदुओं पर रूल बनाए गए हैं नए, जैसा लगता है की बात में जो प्रधानमंत्री ने कहा उससे लगता है कि नए रूल बनाकर उसमें शामिल किया गया है रूल्स में। तो अब वो जो 13 बिंदु हैं वो क्या रूल मेकिंग पावर के अंतर्गत आते हैं? अगर वो एसेंशियल लेजिस्लेटिव पावर मानी जाएगी तो वो केवल लॉ को अमेंड करके ही हो सकता है, लेकिन अगर एसेंशियल लेजिस्लेटिव पावर नहीं है रूल मेकिंग पावर से कवर हो सकता है तो वो रूल से कर सकते हैं।
जी, एक चीज इसमें और जानना चाहेंगे कि अगर ये जो 13 नियम इनको लागू करना था, क्या वो इन्हीं नियमों को अध्यादेश के जरिए ला रहे थे या इन्हीं नियमों की वजह से वो नया कानून लाना चाह रहे थे या फिर ये उससे अलग
है? नहीं, उसमें और बहुत सारी चीजें थी, इसके अलावा और बहुत कुछ था उसमें जो लॉ को अमेंड करने के लिए जरूरी था, केवल इन 13 के लिए नहीं था।
ऑर्डिनेंस जारी करने की जो ये जो प्रोविजन दिया गया है संविधान में, तो क्या इसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में कुछ नहीं कि किसी एक खास विषय पर कितने बार इसको जारी किया जा सकता है?
नहीं, कोई उस पर लिमिट नहीं है। और प्रॉपर्टी का सवाल है कि क्योंकि ये टेम्परेरी पीरियड के लिए होता है तो अगर बार बार इसको अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स करते रहे तो कॉन्स्टिट्यूशनली प्रॉपर नहीं माना जाएगा, लेकिन इलीगलिटी कोई नहीं है।
और ऐसे समय पे जब अध्यादेश जारी किया गया जबकि कुछ ही दिनों के बाद 2-4-6-10 दिन के बाद हाउस को बुलाया जाना है, हाउस चलने वाला है,
हाँ।
तो उस समय ये कितना मतलब मॉरली और कॉन्स्टिट्यूशनली दोनों हिसाब से ठीक होता है?
नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल है, वैलिड है, लीगली वैलिड है, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, बाकी प्रॉपर्टी का सवाल है, विच इज अ मैटर ऑफ।
एक आखिरी सवाल आपसे और जानना चाहेंगे सर कि अभी तक किसी एक विषय पर मैक्सिमम कितने बार ऑर्डिनेंस लाया गया है?
बहुत बार है, एक वाधवा केस है जिसमें बहुत बार, नंबर एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं है, लेकिन बहुत बार लाया गया उसको, बार बार उसको लाया गया, और लेकिन अंतिम निर्णय यही है कि औचित्य का प्रश्न है, असंवैधानिक नहीं है।
असंवैधानिक नहीं है, बता रहे थे संविधान के विशेषज्ञ सुभाष कश्यप, और उनसे बात कर रहे थे हमारे साथी समीर आत्मज मिश्र। कर्नाटक के धारवाड़ में हम्पी कन्नड़ यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर डॉक्टर M.M. कलबुर्गी की कल गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनकी हत्या की खबर से कर्नाटक के लेखक और शिक्षाविद न सिर्फ सदमे में हैं बल्कि चिंतित भी हैं कि अंधविश्वास के खिलाफ लड़ने वाले रैशनलिस्टों को निशाना बनाया जा रहा है। बेंगलुरु से इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
इस तरह की घटना सामान्य तौर से कर्नाटका में नहीं होते हैं, खासकर जब कोई लेखक अपने विचार जाहिर करता है। शायद इसीलिए इस घटना ने कन्नड़ के लेखकों को एक झटका दिया है, कहते हैं कन्नड़ साहित्यकार और आलोचक प्रोफेसर के मरला सिद्धप्पा।
इन द फर्स्ट प्लेस इट्स अ वेरी शॉकिंग न्यूज फॉर मी बिकॉज कलबुर्गी वाज अ ग्रेट स्कॉलर इन कर्नाटका एंड ही वाज नोन।
हमें उनकी हत्या से बहुत बड़ा झटका मिला है। हर कोई जानता है कि डॉक्टर कलबुर्गी के विचार ईमानदार होते थे। हमें पता है कि उनकी हत्या में कोई निजी कारण नहीं है। इस तरह की व्याख्या कर्नाटका में हम पहली बार देख रहे हैं। 3 महीने पहले और एक लेखक और पत्रकार लिंगन सत्यम पेटे की भी इसी तरह हत्या हुई थी। उन्होंने भी ये विचार रखे थे कि कर्नाटका की प्रभावशाली लिंगायत समाज के लोगों को हिंदू नहीं कहा जा सकता है। प्रोफेसर मरला सिद्धप्पा के शब्द। प्रोफेसर मरला सिद्धप्पा का कहना था कि उनके विचार से शायद कट्टरपंथियों को अच्छा नहीं लगा हो और इसी कारण से उनकी हत्या हो गई, लेकिन मशहूर लेखक डॉक्टर बरगूर रामचंद्रप्पा अलग अंदाज से देखते हैं।
ये कलबुर्गी ಅವರ ಹತ್ಯೆ ಅತ್ಯಂತ ದುರಂತ ಮತ್ತು ಆಘಾತಕಾರಿಯಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಘಟನೆ ಇದು ಕನ್ನಡ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಇಂತ
ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇ ಕಭಿ ಭಿ ವಿಚಾರೋ ಕೋ ಸ್ವತಂತ್ರತಾ ಸೆ ಜಾಹಿರ್ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಕಿಸಿ ಲೇಖಕ್ ಕಿ ಹತ್ಯಾ ನಹೀ ಹುಯಿ ಥಿ। अगर अपने विवादास्पद विचारों को प्रकट करने का मतलब है हत्या का खतरा मोल लेना तो ये लोकतंत्र की हत्या है, ये जरूर सांप्रदायिक तत्वों का काम है। ये थे डॉक्टर बरगूर रामचंद्रप्पा के शब्द। ये दोनों लेखकों के विचार महत्वपूर्ण हैं। ये विचार तब जाहिर हो रहे हैं जबकि कट्टरपंथियों की भाषा कठोर होती जा रही थी। कर्नाटका पुलिस इन पूरे मामलों को रखते हुए जांच शुरू कर दी है। बेंगलुरु से इमरान कुरैशी।
इनको पहले 2 गोलियां लगी, फिर 2 गोलियां और लगी, और वो अटैक आगे बढ़ते गए। उसके बाद में ब्रूटल बेनेट फाइट हुई।
कहता साहब मैंने तो मर जाना है, हम हमला करने आए हैं, आप आगे चलिए, मेरी परवाह मत करो। उसने मेरे से बात की, अपना ट्रिगर दबाया, एक ग्रेनेड गया, मैंने पूछे मुड़ कर देखा,
कश्मीर पर हमला किया जा रहा है और मैं जानता हूँ कि पाकिस्तान को उसको बढ़ाने का उसका पूरा इरादा है।
साल 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के 50 साल पूरे होने पर सुनिए रेहान फजल की एक खास पेशकश 1 सितंबर से शाम में दिन भर और सुबह विश्व भारती में।
तो कल से आपके लिए लेकर आएंगे ये सीरीज। कार्यक्रम में आगे आपको सुनवाएंगे पाकिस्तान से वसुतुल्लाह खान की डायरी, लेकिन उससे पहले एक अंतर्राष्ट्रीय खबर। बीते दो दिन मलेशिया में काफी हंगामेदार रहे। राजधानी कुआलालंपुर और कई दूसरे शहरों में प्रधानमंत्री नजीब रजाक के खिलाफ बड़े प्रदर्शन हुए और हजारों प्रदर्शनकारियों ने उनका इस्तीफा मांगा। मामला 70 करोड़ डॉलर का है जो पिछले दिनों प्रधानमंत्री रजाक के खाते में आ गए, लेकिन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि प्रधानमंत्री ये नहीं बता पा रहे हैं कि इतनी बड़ी रकम उनके खाते में कहां से आई। बीबीसी संवाददाताओं का भेजा ब्यौरा सुनिए वत्सल्य राय से।
मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में दो दिन तक ऐसे ही नारे गूंजते रहे। राजधानी और कुछ दूसरे शहरों में शनिवार और रविवार को हजारों लोग सड़कों पर थे। वो प्रधानमंत्री नजीब रजाक का इस्तीफा मांग रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ये बताने में नाकाम है कि उनके निजी बैंक खाते में करोड़ों डॉलर कहाँ से आए। प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांग रहे लोगों का मानना है कि ये रकम सरकारी संपत्ति का हिस्सा है। बीते महीने एक जांच के दौरान प्रधानमंत्री रजाक के खाते में अनाम विदेशी खाते से 70 करोड़ डॉलर यानी करीब 46 अरब 30 करोड़ रुपए जमा कराए जाने की जानकारी हुई। दो दिन तक चले प्रदर्शन के दौरान कई लोगों ने सड़क पर ही रात बिताई। विरोध प्रदर्शन की रैली में शामिल एक शख्स ने कहा, बहुत से लोगों का कहना है कि ये वक्त की बर्बादी है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप यहाँ आए लोगों की संख्या पर गौर करें तो पाएंगे कि सप्ताह के अंत में वो जो कुछ कर सकते थे उसे छोड़कर यहाँ आए हैं। उन्हें लगता है कि वो बदलाव ला सकते हैं। ये थे रैली में शामिल एक प्रदर्शनकारी के शब्द। मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने भी प्रदर्शन में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि रजाक को पद छोड़ने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा,
There is no more rule of law. The only way for the people to get back to the old system.
अब कानून का राज नहीं है। लोगों के पास पुराने तंत्र में वापसी का एक ही तरीका है, इस प्रधानमंत्री को हटाना। प्रधानमंत्री को हटाने के लिए लोगों को अपनी ताकत दिखानी होगी। ये थे महातिर के शब्द। वहीं सत्ताधारी UMNO पार्टी के एक नेता अजीम जबैदी ने बीबीसी से कहा कि हो सकता है कि प्रधानमंत्री से कोई भूल हुई हो, उन्होंने राजनीतिक चंदे को अपने खाते में जमा कराने की इजाजत दे दी हो। उन्होंने कहा कि चंदे को ज्यादा पारदर्शी बनाने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। जबीदी ने कहा,
Well, I think that was probably an oversight on his part, but we have had political donations from.
मुझे लगता है कि उनसे कोई भूल हुई है, लेकिन पहले भी हमें अलग अलग स्रोतों से राजनीतिक चंदा मिलता रहा है, इसलिए अगर राजनीतिक चंदा लेना गलत है तो ये भी गलत है, लेकिन अब तक मलेशिया में राजनीतिक चंदा लेने की इजाजत रही है। ये थे अजीम जबीदी के शब्द। वहीं प्रधानमंत्री नजीब रजाक का कहना है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। रैली आयोजकों का दावा है कि विरोध प्रदर्शन में 3 लाख लोगों ने हिस्सा लिया, जबकि सरकारी अधिकारियों ने ये संख्या 25,000 के करीब बताई है।
बीबीसी संवाददाताओं की रिपोर्टों का सार आपको सुना रहे थे वात्सल्य राय। और अब पाकिस्तान से वसुतुल्लाह खान की डायरी।
पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में लगभग 2 वर्ष पहले जब भत्ताखोरी, करप्शन, स्ट्रीट क्राइम्स, लैंड माफिया और आतंकवाद के खिलाफ अर्धसैनिक बल, रेंजर्स और पुलिस का ऑपरेशन शुरू हुआ तो सब भत्ताखोरों, करप्टों, स्ट्रीट क्रिमिनल्स, लैंड माफिया और आतंकवादियों ने इस ऑपरेशन की सराहना की, क्योंकि सब जानते थे कि पहले भी सरकार ऐसे कच्चे पक्के ड्रामे करती रही और थक हार के बैठ गई। इस बार भी यही होगा, इसलिए जरा देर को हम लोग अभी छुट्टी मना के थोड़ा आराम शाराम कर लेते हैं। मगर इस बार ऐसा नहीं हुआ। رینجرز اور انٹیلیجنس ایجنسیوں نے پہلے کی طرح سب پہ ایک ساتھ ہاتھ ڈالنے کی غلطی نہیں کی بلکہ پہلے سڑک چھاپ اپرادھیوں کی خبر لی، اس کے بعد بھتہ خوروں کی طرف مڑی، پھر بائیں کو ٹرن لے کے لینڈ مافیا کے پیچھے دوڑ پڑی اور پھر اچانک دائیں ہاتھ کو یو ٹرن لیتے ہوئے کرپٹوں کے پیچھے بھاگ پڑی۔ جبکہ آتنکوادیوں کے ساتھ بھی اب تک 56 والی فلم چل رہی ہے۔ جن جن پہ ہاتھ پڑتا جا رہا ہے وہ آپریشن کی سراہ نہ چھوڑ ادھر ادھر چھپتے پھر رہے ہیں۔ جن کے کنیکشن ہیں وہ دبئی یا لندن کا ٹکٹ کٹا رہے ہیں، جو پیچھے رہ گئے وہ گرفتاری سے پہلے بیل کے لیے کورٹ کچہری کے چکر لگا رہے ہیں۔ حالت یہ ہے کہ صرف سندھ پرانت میں چیف سیکرٹری اور حاضر اور بھوتپورو منتریوں سے لے کے نچلے افسروں تک کوئی 83 لوگوں نے پکڑ دھکڑ سے بچنے کے لیے بیل کروا لی ہے اور باقی جج ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ راجنیتک گٹوں میں سب سے پہلے الطاف حسین کی ایم کیو ایم کی باری آئی تو نواز شریف کی مسلم لیگ اور آصف زرداری کی پیپلز پارٹی خوش ہو گئے۔ اب آصف زرداری کے یار دوستوں کے گلے پہ ہاتھ پڑا تو نواز شریف والے بھی ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ اگلا کون۔ رہ گئے عمران خان تو وہ پچھلے چناؤ کے بعد سے آج تک ٹرک کی بتی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، ان کی بلا سے کس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ مگر واقعی یہ ہو کیا رہا ہے؟ پارلیمنٹ میں بیٹھی جن پارٹیوں نے آتنکواد سے نمٹنے کے مکمل اختیارات سینا کو دیے، اب وہی ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ بھیا ہم نے تو فوج کو آتنکواد سے سلٹنے کا اختیار دیا تھا، مگر یہ تو کرپشن کو بھی آتنکواد سمجھ بیٹھے ہیں۔ فوج کہتی ہے کہ آتنکواد پھیلا ہی اس لیے کہ پورا سسٹم کرپٹ ہے، جب تک دھلائی نہیں ہوگی تب تک خون کے دھبے کیسے مٹیں گے۔ اب حالت یہ ہے کہ نواز شریف جن کا چناؤ سمبل شیر تھا، وہ شیر تو کچھار بھیجا بیٹھا اور کچھار کے باہر اصلی والا شیر گھوم رہا ہے۔ یہی حال سندھ پرانت میں حکومت کرنے والی پیپلز پارٹی کا بھی ہے۔ مکھیہ منتری قائم علی شاہ کا چیخ چیخ کے گلا بیٹھ گیا کہ کراچی آپریشن کا کپتان میں ہوں، مگر رینجرز والے کہتے ہیں کہ آپ ہی کپتان ہیں شریمان، لیکن ذرا پیچھے ہٹ کے بیٹھیے، ہمیں اپنا کام کرنے دیجیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو بہت ہی اچھا ہے کہ اس بار سینا ستہ چھینے بغیر سویلینز کو آگے رکھے سسٹم کی دھلائی کر رہی ہے، مگر پنڈت لوگ کہتے ہیں کہ اگر پورا جنگل بھی سیدھا ہو جائے تب بھی شیر سے کون پوچھ تاچھ کرے گا اور کون بتائے گا کہ مہاراج آپ کا کام اب پورا ہوا، آپ پنجرے میں جا کے تھوڑا سا آرام کر لیں۔
یہ تھی وسط اللہ خان کی ڈائری پاکستان سے، کیسی لگی آپ کو ہمیں ضرور لکھ بھیجیے گا۔ اور باری اخباروں کی، واتسلیہ جی آج کے اخبار کیا کچھ کہہ رہے ہیں؟
اشوک جی آج جو اخباروں کی پرمکھ دو خبروں پر زیادہ اخباروں نے دھیان دیا ہے، مہاگٹھبندھن کی پٹنا ریلی اور بھومی ادھگرہن ادھیادیش سے جڑی خبریں جو ہیں ان کو پرمکھتا سے جگہ ملی ہے۔
جی
نبارا ٹائمز نے مہاگٹھبندھن یعنی جنتا دل یونائیٹڈ، راشٹریہ جنتا دل اور کانگریس کی جو سنیکت ریلی ہوئی تھی اس کو، جی پٹنہ میں، اس کو لیڈ خبر بنایا ہے۔ اخبار کی ہیڈ لائن ہے پٹنہ سے مودی پر وار، امر اجالا نے اس خبر کو سیکنڈ لیڈ بنایا ہے۔ اس اخبار میں سونیا گاندھی کے بیان کو ہیڈ لائن میں دیا ہے۔
جس طرح سارے مودی ورودھی کل اکٹھے ہوئے تو ظاہر طور پر اسی طرح کی جھلک اخباروں میں ہے اور اسی طرح ہیڈ لائن دی گئی ہے اخباروں۔
جی جی امر اجالا کی ہیڈ لائن جو ہے، شو بازی کرنے والی مودی سرکار سے اٹھا جنتا کا وشواس۔ دینک جاگرن نے اس خبر کے لیے بڑی دلچسپ ہیڈ لائن لگائی ہے، جٹے چار مودی پر وار،
کیا بات ہے۔
جی اسی طریقے سے جنستا نے بھی ریلی کی خبر کو اپنی لیڈ سٹوری بنایا ہے، ان کی ہیڈنگ کہتی ہے مودی پر گرجی تکڑی۔ جبکہ انڈین ایکسپریس لکھتا ہے کہ سونیا نتیش اور لالو کے حملے کا سنیکت نشانہ مودی۔ بھومی ادھگرہن ودھیک سے جڑی خبروں کو بھی کئی اخباروں نے اپنی لیڈ خبر بنایا ہے،
جس کی آج سمے سیما ختم ہو رہی ہے اور کل مودی، پردھان منتری مودی نے کہہ دیا کہ اب آگے ادھیادیش نہیں لے کے آئیں گے۔
جی جی اشوک جی، اور دا ہندو نے اس پہ اپنی ہیڈ لائن دی ہے، دفن ہوا بھومی ادھیادیش۔
کئی جگہ اس کو ایسے بھی پرچارت کیا جا رہا ہے کہ مودی سرکار نے ایک اور یو ٹرن لے لیا۔
جی جی بالکل، پائنیئر نے لکھا ہے پی ایم نے لینڈ آرڈیننس کو گڈ بائے کہا، امر اجالا نے بھی اس کو لیڈ خبر بنایا ہے، اخبار نے لکھا ہے بھومی ادھگرہن پر نیا ادھیادیش نہیں۔ دینک بھاسکر نے اپنی ہیڈنگ دی ہے مودی نے چھوڑی زمین، چوتھا آرڈیننس نہیں۔ پٹیل آرکشن آندولن کے نیتا ہاردک پٹیل کی خبر کو بھی پرمکھتا سے اخباروں میں جگہ ملی ہے،
کل وہ دلی آئے۔
جی ٹائمس آف انڈیا نے اسے اپنی لیڈ خبر بنایا ہے، نہ بہار ریلی کو بنایا ہے نہ آرڈیننس کو بنایا ہے، پٹیل آرکشن کے نیتا ہاردک پٹیل خبر کو ٹائمس آف انڈیا نے لیڈ خبر بنایا ہے۔
ہاردک کل کئی سمودائے کے نیتاؤں سے ملے ہیں، ایسے سمودائے جو خود آرکشن کی مانگ کر رہے ہیں۔
جی بالکل، اور ٹائمس آف انڈیا کی ہیڈ لائن ہے اس پہ کہ دلی میں ہاردک نے کہا آندولن کو پورے دیش میں لے جائیں گے۔ جنستا نے हार्दिक की खबर को हेडिंग दी है, 100 मीटर की दौड़ नहीं है, मैराथन है आरक्षण आंदोलन। अमर उजाला ने भी इसे पहले पन्ने पर जगह दी है। द हिंदू ने और टाइम्स ऑफ इंडिया ने कन्नड़ लेखक M.M. कुलबर्गी की हत्या की खबर को भी पहले पन्ने पर जगह दी है
जी।
कई अखबारों ने एम्स की छात्रा ने जो सुसाइड की थी उस खबर को भी पहले पन्ने पर जगह दी है। हाई प्रोफाइल शीना बोरा मर्डर केस की खबर को भी अखबारों ने आज भी प्रमुखता से छापा है।
लगातार खबरों में खबर बनी
जी,
हुई है।
दैनिक भास्कर ने आम लोगों से जुड़ी हुई तीन खबरों को एक साथ दिया है, जिसमें पेट्रोल डीजल 3 रुपये तक सस्ता हो सकता है 1 तारीख से, LPG कनेक्शन ऑनलाइन मिल सकता है और सबके लिए घर के लिए केंद्र ने 305 शहरों को चुना है।
जी बहुत बहुत शुक्रिया वत्सल इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बात खेलों की।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच मौजूदा टेस्ट सीरीज का तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जहां कल खेल के तीसरे दिन पिच ने इतने रंग बदले कि पहली पारी में 145 रन की नाबाद शतकीय पारी खेलने वाले सलामी बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा का ध्यान भी सबके दिमाग से हट गया। दरअसल कल खेल समाप्त होने के समय दूसरी पारी में भारत का स्कोर 3 विकेट खोकर 21 रन था। हालांकि पहली पारी के आधार पर भारत को 111 रन की बढ़त मिली। इससे पहले श्रीलंका की पहली पारी 52.2 ओवर में ही 201 रन पर समाप्त हुई। एक समय तो श्रीलंका के 6 विकेट केवल 47 रन पर गिर चुके थे और उसके सामने फॉलो ऑन का खतरा मंडरा रहा था। ऐसे में विकेटकीपर बल्लेबाज कुशल परेरा ने 55 रन बनाकर पारी को संभाल लिया। उनका बखूबी साथ दिया रंगना हैराथ ने, जिन्होंने 49 रन बनाए। भारत के तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा ने 54 रन देकर 5 विकेट झटके। इससे पहले भारत की पहली पारी 312 रन पर समाप्त हुई। सलामी बल्लेबाज के तौर पर 145 रन बनाकर नाबाद रहने का कारनामा करने वाले चेतेश्वर पुजारा चौथे भारतीय बल्लेबाज हैं। उनसे पहले सुनील गावस्कर, वीरेंद्र सहवाग और राहुल द्रविड़ भी पारी की शुरुआत करने के बाद नाबाद रह चुके हैं। लेकिन दूसरी पारी में चेतेश्वर पुजारा बिना कोई रन बनाए धमिका प्रसाद का शिकार बने। KL राहुल और अजिंक्य रहाणे नुआन प्रदीप की गेंद पर आउट हुए। कल स्टंप के समय कप्तान विराट कोहली 1 और रोहित शर्मा 14 रन बनाकर खेल रहे थे। कल के खेल में 15 विकेट गिरे। अब जब 132 रन की बढ़त भारत के पास है तो देखना है कि बचे हुए 7 विकेट के दम पर भारत कितना लक्ष्य श्रीलंका के सामने रखता है। उधर बीजिंग में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के अंतिम दिन कल पुरुषों की 1500 मीटर दौड़ का स्वर्ण पदक केन्या के असबेल किप्रोप ने जीता। 4x400 मीटर का स्वर्ण पदक अमरीकी चौकड़ी ने अपने नाम किया। हाई जंप का स्वर्ण पदक कनाडा के डेरेक ड्रोयुइन ने जीता। महिलाओं की 5000 मीटर दौड़ का स्वर्ण पदक इथोपिया की अलमाज अयाना ने जीता। मैराथन का स्वर्ण पदक भी इथोपिया की मारे दिबाबा ने जीता, जबकि 4x400 मीटर रिले का स्वर्ण पदक जमैका ने अपने नाम किया। पदक तालिका में केन्या 7 स्वर्ण, 6 रजत और 3 कांस्य पदक सहित 16 पदकों के साथ पहले, जमैका 7 स्वर्ण सहित 12 पदकों के साथ दूसरे और अमरीका 6 स्वर्ण सहित 18 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा।
और अब कार्यक्रम के समापन से पहले बारी मुख्य समाचारों की।
BBC समाचार। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने विवादों में रहे भूमि अधिग्रहण विधेयक पर फिर से अध्यादेश नहीं लाने का फैसला किया है। इस्लामिक स्टेट के चरमपंथियों के सीरिया के शहर पलमायरा में एक धार्मिक इमारत के कुछ हिस्से को उड़ाने की खबर है। यूरोपीय संघ ने कहा है कि प्रवासी संकट का समाधान निकालने के लिए उसके सभी गृहमंत्री 2 हफ्ते बाद लग्जमबर्ग में बैठक करेंगे। मिस्र में अक्टूबर और नवंबर में संसदीय चुनाव होंगे। मिस्र में साल 2012 में पिछली संसद भंग हुई थी। चीन में 200 लोगों को झूठी अफवाह फैलाने के मामले में सजा दी गई है। इन लोगों पर शेयर बाजार की हालिया गिरावट और तियानजिन में हुए धमाकों को लेकर इंटरनेट पर अफवाह फैलाने का आरोप था। ये जानकारी देने वाली सरकारी न्यूज़ एजेंसी ने ये नहीं बताया है कि इन लोगों को क्या सजा दी गई है। मलेशिया के प्रधानमंत्री नजीब रजाक पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के खिलाफ राजधानी कुआलालंपुर और दूसरे शहरों में जोरदार प्रदर्शन हुए। BBC समाचार।
तो नमस्कार, भारत में अभी के लिए बस इतना ही। 1 घंटे बाद आपसे फिर मुलाकात होगी और कार्यक्रम होगा विश्व भारती। इस कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे शाकिर आलम। अशोक कुमार को दीजिए फिलहाल अनुमति। नमस्कार।